नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत पे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुहेल समीर ने पद छोड़ दिया है। समीर का कंपनी के पूर्व संस्थापक अश्नीर ग्रोवर के साथ विवाद हुआ था। भारत पे ने एक बयान में कहा कि समीर 7 जनवरी 2023 से रणनीतिक सलाहकार के रूप में सेवाएं देंगे। इसमें आगे कहा गया, मौजूदा मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। अडानी समूह ने ओपन ऑफर के तहत खरीदे गए NDTV के शेयरों के लिए तय रकम से अतिरिक्त कीमत देने का फैसला किया है। अडानी समूह ने ओपन ऑफर के तहत NDTV के शेयर 294 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदा था, लेकिन अब अडानी समूह ने इसके अतिरिक्त 48.65 रुपए देने का फैसला किया है। यानी अब NDTV के एक शेयर की कीमत 342.65 रुपए प्रति शेयर होगी। अडानी समूह ने NDTV के संस्थापकों को 342.65 प्रति शेयर की दर से भुगतान किया था। वही दर अब ओपन ऑफर के तहत शेयर बेचने वालों को भी दिया जाएगा। बता दें कि पहले NDTV का ओपन ऑफर मूल्य 294 प्रति शेयर था और प्रमोटर ट्रांसफर मूल्य 342.65 प्रति शेयर था। अडानी एंटरप्राइजेज ने 22 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक NDTV में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया था। उस ओपन ऑफर में निवेशक NDTV के 53 लाख से अधिक शेयरों को बेचने के इच्छुक थे। वहीं स्टॉक के ट्रेडिंग मूल्य पर भी भारी छूट दी गई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब निवासियों को ये सुविधा दी है कि वो अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने मंगलवार को आधिकारिक बयान में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन अद्यतन कर सकते हैं। इस तरह के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, अंक पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिन पर मुखिया और उन व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हों। प्राधिकरण ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो वो परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व घोषणा को जमा कर सकता है। बयान के मुताबिक परिवार के मुखिया की सहमति से पते को ऑनलाइन ढंग से आधार में अद्यतन करने की सुविधा किसी निवासी के बच्चों, पत्नी या माता पिता जैसे उन करीबी रिश्तेदारों के लिए काफी मददगार होगी जिनके पास अपने नाम पर सहयोगी दस्तावेज नहीं है। विभिन्न कारणों से लोग शहरों एवं कस्बों को बदलते रहते हैं, ऐसे में ये सुविधा लाखों लोगों के लिए मददगार होगी। इस साल यानी 2023 में वैश्विक मांग कमजोर होने और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात मामूली रूप से प्रभावित होगा। भारत को अपने चालू खाते में सुधार करने के लिए ऊर्जा आयात पर खर्च में कटौती करने के प्रयास करने चाहिए। आर्थिक शोध संस्थान GTRI ने मंगलवार को ये कहा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि 2022 में कच्चे तेल और कोयले के आयात पर भारत $270 अरब खर्च करेगा जो कुल आयात खर्च का 40% बैठता है। GTRI ने कहा, भारत को स्थानीय तेल क्षेत्रों में खोज में तेजी लानी होगी और कोयला खदानों के जरिए उत्पादन बढ़ाना होगा। ऐसा होने पर ऊर्जा के आयात पर होने वाले खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी और चालू खाते की स्थिति सुधरेगी। संस्थान ने कहा कि चीन को अलग थलग करके वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के अमेरिका के प्रयास से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो रहा है और कई विनिर्माण कंपनियां अपना स्थान बदल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं CEO सत्य नडेला ने क्लाउड को बड़ा बदलाव लाने वाली बताते हुए कहा कि इस प्रौद्योगिकी को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। नडेला भारत आए हुए हैं। अपने भारत दौरे में नडेला इस हफ्ते दिल्ली और बेंगलुरु जाएंगे तथा महत्वपूर्ण ग्राहकों, स्टार्टअप, डेवलपर, शिक्षाविदों और छात्रों से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट फ्यूचर रेडी लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने क्लाउड और कृत्रिम मेधा को आवश्यक बताते हुए कहा कि ये आर्थिक वृद्धि को गति देने में सहायक होंगी। नडेला ने कहा कि क्लाउड अभी आरंभिक से मध्यम दौर में है और ये बड़ा बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि क्लाउड को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने गुरुग्राम में 9 एकड़ जमीन खरीदी है। उसका अनुमान है कि यहां आवासीय परियोजना के विकास से उसे 2500 करोड़ रुपए का बिक्री राजस्व मिलेगा। कंपनी ने 29 दिसंबर को शेयर बाजारों को इस बारे में सूचित किया। हालांकि सौदे के मूल्य के बारे में जानकारी नहीं दी गई। बाजार सूत्रों के अनुसार गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ये 9 एकड़ जमीन 300 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसमें बताया गया कि इस भूमि पर 16 लाख वर्ग फुट की आवासीय परियोजना का विकास किया जाएगा। परियोजना का अनुमानित राजस्व करीब 2500 करोड़ रुपए होगा। ये जगह रणनीतिक रूप से गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से आसान पहुंच के साथ स्थित है, जिसे दक्षिणी पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है। जीवीके समूह की कंपनियों मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मुंबई में हवाई अड्डा परिचालन में 705 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला यहां की एक विशेष अदालत ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को स्थानांतरित कर दिया। इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई ने कहा कि भ्रष्टाचार के कथित मामले की जांच में सरकारी अधिकारियों की भूमिका नहीं मिली है। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश ए एस सैयद के समक्ष आवेदन देकर कहा था कि जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड MIAL और अज्ञात सरकारी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iinsatta.com पर नमस्कार।